लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। अशांति पैदा करने वाली अपार संपत्ति की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा सामान अच्छा है। बैर के घर के मोटे बछड़े की अपेक्षा प्यार के घर का साग पात अच्छा है। क्रोधी मनुष्य झगड़ा पैदा करता किंतु धैर्यवान उसे शांत करता है। आलसी का पथ कांटों से भरा है किंतु धर्मी का मार्ग प्रशस्त है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 15वें अध्याय के 16 से लेकर 19 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि मनुष्य को सदैव जो कुछ है उसी में संतोष करना चाहिए तथा और अधिक का लालच कभी नहीं करना चाहिए। थोड़े के साथ ही जीवन सुखमय रहता है। थोड़े में संतोष से ही चिंताएं कम हो जाती हैं, हम रातों को सो पाते हैं। थोड़े में संतुष्टि हमें धर्म और कर्तव्यों पर ध्यान देने में मदद देती है। श्रोताओ, हमारे भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी युग में निरंतर और अधिक होने की चाह हमें बनी रहती है तथा हम हमेशा थोड़ा रहने या कम के भय में जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जितना अधिक हमारे पास होगा उतना ही अधिक हम परेशान रहेंगे। बड़ा खजाना बड़ी परेशानी लेकर आता है और जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। यहाँ इस बात के प्रति भी ध्यान आकर्षित कराया गया है कि उचित रीति से एकत्र किया गया धन मन्ना के रूप में होता है, तथापि कम धन होने पर भी व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं होती है, क्योंकि वह कम धन अपने दायित्वों को निभाते हुए मेहनत से कमाया गया हुआ धन होता है। जितना कम हमारे पास होगा उतना ही हम चिंताओं से मुक्त होंगे। कम धन का अर्थ है कम चिंता, कम परेशानियां। अधिक धन का अर्थ है अधिक परेशानियां और अधिक झुंझलाहट। लेखक कहता है, बैर के घर के मोटे बछड़े की अपेक्षा प्यार के घर का सागपात अच्छा है। श्रोताओ, प्रेम के बिना जीवन निस्सार हो जाता है, जबकि प्रेम व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का स्रोत बनता है। व्यक्ति के पास भले ही कीमती खान पान न हो, भले ही उसका भोजन साधारण सा हो, सरल सा हो, सस्ता हो, तथापि वह सुख का स्रोत होता है। इसलिए शत्रु के मोटे बछड़े का भोजन करने से यही अच्छा है कि व्यक्ति प्यार के सस्ते सागपात से स्वतः को पुष्ट करे। इस स्थल पर श्रोताओं का ध्यान हमने संत लुकस रचित सुसमाचार में वर्णित उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की ओर आकर्षित कराया था, जिसमें पिता उड़ाऊ पुत्र के वापस घर लौटने पर आनंद मनाता है। श्रोताओ, सच तो यह है कि अमीरी और गरीबी हाथ में नहीं दिल में होती है। व्यक्ति को दिल से अमीर होना चाहिए, वही व्यक्ति सच्चा धनी होता है जो संतुष्ट है, जबकि जो व्यक्ति सदैव कुछ पाने की चिंता में लगा रहता है वह सचमुच में दुखी और गरीब होता है। फिर क्रोधी और आलसी व्यक्तियों के विषय में लेखक कहता है कि क्रोधी झगड़े का कारण बनता है। आमतौर पर क्रोधी पुरुष ही झगड़े को भड़काते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति बुद्धिमानी के साथ क्रोध करने में देर करता है वह शांति का निर्माण करता है। क्रोधी के सदृश ही आलसी व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता उसका पथ कांटों से भरा होता है। अपने आलसीपन में वह अपने मार्ग में हजारों कठिनाइयों की कल्पना कर लेता है जिन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन वे सभी उसकी कोरी कल्पना का परिणाम होते हैं। उसके पास कुछ करने को नहीं होता इसलिए वह कल्पना के गढ़ बनाता है। दूसरी ओर धर्मी का मार्ग प्रशस्त है, वह अपने दायित्वों का पालन करते हुए सही मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। वह स्तोत्र ग्रंथ के 18वें भजन के इन शब्दों को अपने कंठ से दुहरा उठता है। ईश्वर ही मेरी चट्टान और मेरा शरण स्थल है, ईश्वर ही मेरी ढाल, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता है।
प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहायक है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है।
आगे सूक्ति ग्रंथ के 15वें अध्याय के 20 से लेकर 24 तक के पदों में लेखक कहता है, बुद्धिमान पुत्र पिता को आनंद देता किंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता का तिरस्कार करता है। मूर्खता नासमझ को आनंद देती है किंतु बुद्धिमान सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है। अविचारित योजनाएं असफल हो जाती हैं, परामर्शदाताओं की भारी संख्या उन्हें सिद्ध करती है। मुंह तोड़ जवाब देने में मनुष्य को आनंद आता है। यथोचित शब्द कितने अच्छे हैं। बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर ले जाता है और उसे नीचे अधोलोक जाने से बचाता है। श्रोताओ, इन पदों में एक बार फिर लेखक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच अंतर दर्शाकर अपने पाठकों के मार्गदर्शन का जतन करता है। बुद्धिमान पुत्र वह होता है जो अपने पिता के निर्देशों का पालन करता और दी गई शिक्षाओं पर ध्यान देता है। पिता को ऐसे पुत्र पर गर्व होता है क्योंकि वह एक आज्ञाकारी पुत्र है जो सीखने में प्रखर और सीखे गए पाठ को अपने जीवन पर अमल करने के लिए तत्पर रहता है। बुद्धिमान के विपरीत मूर्ख होता है जो पिता से कुछ सीख नहीं पाता। वह अपनी माता का तिरस्कार करता है। माँ पुत्र की मदद को सदैव तत्पर रहती है किंतु अपने अहंकार और अभिमान में मूर्ख व्यक्ति कुछ भी सीख नहीं पाता। वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और अपना जीवन यों ही गंवा देता है। जबकि सूक्ति ग्रंथ के लेखक के अनुसार बुद्धिमान सन्मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। 22वें पद में लेखक कहता है, अविचारित योजनाएं असफल होती हैं, परामर्शदाताओं की भारी संख्या उन्हें सिद्ध करती है। श्रोताओं, बिना सोच समझकर यदि हम कोई काम करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वह काम अच्छा और सफल होगा। पुरानी कहावत है, एक से दो सिर अच्छे। दूसरों की सलाह सुनने और सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के लिए यह कहावत उचित है। जब हम किसी काम का बीड़ा उठाते हैं तब अन्यों की सलाह लेकर काम करने से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं, जबकि बिना सोच विचार के बिना सलाह मशवरे के यदि कोई काम करते हैं तो केवल असफलता हमारे हाथ लगती है और हम निराशा में डूब जाते हैं। बुद्धिमान सलाहकारों के साथ लिया गया निर्णय अवश्य ही अच्छे फल देगा। निर्णय जितना महत्वपूर्ण होगा कॉरपोरेट ज्ञान उतना ही उपयुक्त होगा। सच तो यह है कि यदि हम कुछ करने से पहले उसकी चर्चा न करें और अन्यों की सलाह नहीं लें, तो यह हमारी मूर्खता का परिचायक है। आगे 15वें अध्याय के 23वें पद में लेखक कहता है, मुंह तोड़ जवाब देने में मनुष्य को आनंद आता है। यथोचित शब्द कितने अच्छे हैं। श्रोताओं, जब हम किसी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तब हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। हम अपने विवेक पर प्रसन्न होते, गर्व करते हैं और कहते हैं, वाह, क्या कमाल का जवाब दिया है, क्या सटीक जवाब दिया है हमने, सामने वाले की बोलती ही बंद कर दी। श्रोताओं, मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होने का अर्थ है कि हम वाक पटुता में माहिर हैं। तथापि लेखक याद दिलाता है कि वाक पटुता ठीक है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यथोचित शब्दों का उच्चार। कब और किस स्थिति में क्या कहना है, इसका ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। 15वें अध्याय के 24वें पद में लेखक कहता है, बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर ले जाता है और उसे नीचे अधोलोक जाने से बचाता है। बुद्धिमान और विवेकी वही व्यक्ति हैं जो ईश्वरीय मार्ग की तलाश करते, पाप से इनकार करते और सदैव सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं।
प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही मेरी ज्योति शिखा है, प्रभु ही परम सहारा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने आज पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से विश्वासियों का आह्वान करते हुए लिखा, आइए हम एक साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया के सदस्यों की गलती के चलते दुख सहते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने लॉस एंजल्स के सहायक धर्माध्यक्ष डेविड ओकोनेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एकता संदेश में अपनी प्रार्थना का आश्वासन दिया है तथा एक पल्ली पुरोहित के रूप में अपने लोगों के करीब रहने के लिए उनकी सराहना की है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन द्वारा जारी एकता संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लोगों के करीब रहने वाले चरवाहे के रूप में लोकप्रिय धर्माध्यक्ष के लिए शोक व्यक्त किया है तथा एक पुरोहित का साक्ष्य देने के लिए उनकी प्रशंसा की है। कार्डिनल परोलिन ने लिखा है, सहायक धर्माध्यक्ष डेविड के दुखद एवं असमय मौत की खबर सुन संत पापा फ्रांसिस ने अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है एवं महाधर्म प्रांत के पुरोहितों, धर्म सामाजियों एवं लोक धर्मियों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है। धर्माध्यक्ष का अंतिम संस्कार 3 मार्च को सम्पन्न होगा। धर्माध्यक्ष डेविड की गृह सेविका के पति कार्लोस मदीना को आयरलैंड में जन्मे दिवंगत सहायक धर्माध्यक्ष की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 69 वर्षीय धर्माध्यक्ष शनिवार 18 फरवरी को लॉस एंजल्स से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व स्थित हसिंडा हाइट्स में अपने घर के बेडरूम में सीने में गोली लगने से मृत पाए गए थे। पोप फ्रांसिस ने उन्हें 21 जून 2015 को लॉस एंजल्स का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था। उनकी हिंसक मौत ने लॉस एंजल्स के कार्तिक समुदाय और उनके मूल शहर कोर को भी सदमे में डाल दिया है। लॉस एंजल्स के महाधर्माध्यक्ष जोश एच गोम्स ने सोमवार को उनके बारे बतलाते हुए कहा कि वे एक भले पुरोहित, एक अच्छे धर्माध्यक्ष एवं शांति के व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबों, बेघर, अप्रवासी और समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा, हम उन्हें खोकर बहुत दुखित हैं। पोप फ्रांसिस द्वारा बुलाई गई सिनोडल प्रक्रिया के अफ्रीकी महाद्वीपीय चरण की सभा के लिए लगभग 200 प्रतिनिधि बुधवार को इथोपिया के अदिस अबाबा पहुंच चुके हैं। वैटिकन न्यूज की स्वाहिली भाषा के पत्रकार फादर रिचर्ड माजीगावा पहले से ही महाद्वीपीय सभा के लिए अदिस अबाबा में मौजूद हैं। वैटिकन न्यूज को रिपोर्ट करते हुए फादर माजिगावा ने कहा, 200 प्रतिनिधियों में मुख्य रूप से लोक धर्मी पुरोहित, धर्म बहने, युवा सेमिनरी छात्र एवं कुछ नव शिष्याएं भाग ले रहे हैं। उनमें 15 धर्माध्यक्ष एवं 7 कार्डिनल भी शामिल हैं। बुधवार को SECAM आयोजन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किनशासा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल रिडोलिन अम्बोंगो ने की। इस सत्र से पहले मोजाम्बिक में SECAM के पहले उपाध्यक्ष धर्माध्यक्ष लुसियो एंड्रिस मुंडुला के नेतृत्व में पौत्र मिस्सा का आयोजन किया गया था। मिस्सा के दौरान धर्माध्यक्ष ने अफ्रीका में धर्म सभा की बैठक और उत्सव की सफलता के लिए प्रार्थना की। धर्माध्यक्ष मुंडुला ने नाइजीरिया में शांति, स्थिरता और मेल मिलाप के लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि देश विवादित राष्ट्रपति चुनाव से उबरने के लिए शुरुआती कदम उठा रहा है। अफ्रीका में सीनेट के महाद्वीप चरण का आधिकारिक उद्घाटन बृहस्पतिवार को किया जा रहा है। सीनेट में युवक और युवतियों की उपस्थिति गौर करने योग्य है, क्योंकि जब महत्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं तो अक्सर समाज के इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मेज पर नहीं होते हैं। अफ्रीका में सिनोडालिटी पर सीनेट के महाद्वीप चरण की सभा का समापन अदीस अबाबा के खेल स्टेडियम में यूखरिस्त समारोह के साथ होगा। उधर नाइजीरिया के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने शांति का आह्वान किया है एवं नागरिकों से कानून का पालन करने और प्रार्थना करने का आग्रह किया है। चूंकि बोला टिनुबु ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, धर्माध्यक्षों ने मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। बोला टिनुबु सत्तारूढ़ ओल्ड प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और वे मोहम्मद बुहारी की जगह लेंगे, जिनकी अध्यक्षता स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबे समय तक चली। लेकिन कई नाइजीरियाई लोगों ने असुरक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी एवं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से ग्रस्त अफ्रीका के सबसे बड़े लोकतंत्र में शासन में बदलाव की उम्मीद जताई थी। टिनुबु की जीत की घोषणा के बाद गुस्सा बढ़ रहा है और विपक्षी नेताओं का दावा है कि चुनाव में धांधली हुई है और वे नए सिरे से मतदान की मांग कर रहे हैं। लोगों के आह्वान एवं चिंता को कई लोगों ने प्रतिध्वनित किया है, जिसमें कारितास नाइजीरिया भी शामिल है। जैसे ही विवादित चुनावों के लिए आधिकारिक परिणामों ने नई तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय चुनाव आयोग की विफलता सहित अड़चनों, देरी, अशांति एवं तकनीकी कठिनाइयों से भरी प्रक्रिया के बाद टिनुबु की जीत की पुष्टि की। इस पर INEC के साथ देश के कार्तिक धर्माध्यक्षों ने भी निराशा व्यक्त की है। धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष लुसियस ने कहा, बहुत लंबे समय से हमने शांतिपूर्ण, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनावों के साथ साथ परिणामों के सही हस्तांतरण के लिए प्रार्थना की थी। एक बयान में उन्होंने सप्ताहांत चुनाव के दौरान किए गए वादों को याद किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है कि चुनाव के दिन कई मतदाताओं के अनुभव अड़चन मुक्त मतदान से बहुत अलग थे, जिसके लिए बार बार वादा किया गया था। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि न केवल राजनीतिक दलों में बल्कि नाइजीरिया की जनता में भी आंदोलन में स्पष्ट तनाव है। अपने बयान में उन्होंने आयोग के तनाव को दूर करने और आम हित में चिंता के मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का आग्रह किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जा मेलोनी आज भारत की यात्रा पर हैं। AGI न्यूज एजेंसी ने उनकी इस यात्रा को एक रणनीतिक एवं दूरदर्शी कदम बतलाया है। दक्षिणी इटली के कुत्रो तट पर आप्रवासियों से भरे जहाज के टूट जाने की खबर सुन इताली फादर रोजारियो मोरोने उस क्षेत्र की ओर भागे थे, जहां अब तक करीब 62 शव बरामद किए गए हैं। त्रास्ती के प्रत्यक्षदर्शी ने भाइयों एवं बहनों का स्वागत करने हेतु आम मानवता एवं करुणा की अपील की है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में फादर रोजारियो ने उन लोगों के बारे बतलाया है जिनको उन्होंने तट की ओर जाते हुए देखा था। उन्होंने कहा, वे मेरे सामने थे, मेरे भाई और बहन मरे हुए। मैंने उनके चेहरों को नहीं देखा, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो वे सभी सफेद शव बैग में रख दिए गए थे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।